ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। पवित्र चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम और आप सबके हृदय में विराजित उस दिव्य चेतना को भी प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। कृष्ण कहते हैं ध्यान के लिए एक शुद्ध स्थान में बैठे, अशुद्ध स्थान में नहीं बैठे। शुद्ध स्थान कौन सा होता है? जहां प्रवृत्ति है वो कल्याणकारी हो, जहां की प्रवृत्ति परमात्मामय हो, जहां की प्रवृत्ति में सुचिता और भद्रता हो, वही शुद्ध स्थान होता है। जिन वस्त्रों को पहन करके शौचादि किए हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके लेट जाते हैं सोते हैं, पलंग वगैरह में भी बैठते सोते हैं या भोजन खंड है इनमें बैठ करके या उन वस्त्रों को पहन करके ध्यान ना करें। इसलिए कल जैसे कहा था लोग बाग तीर्थ में जाते हैं। क्यों जाते हैं तीर्थ में? क्योंकि लोग बाग घर में जब ध्यान करे ना करे तीर्थों में जाकर के पुरुष चरण करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्वाणी, ये ना तीर्थ है, तीर्थ को प्रयत्न करते हैं। कैसे प्रयत्न करते हैं? जप से, ध्यान से, प्रार्थना से, स्वाध्याय से, सत्संग से। ये सूची है, वहां पर बैठे हैं स्थिर वैसे। क्या कहा है? स्थिरम आसन आत्मन। आत्मा को इधर उधर मत भटकाओ, अपनी जीव को इधर उधर मत भटकाओ, आत्मा को भी स्वस्थ रखो। आपका आसन बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, और आसन में एक कुश बिछा जाए, कृष्ण मृग का चर्म बिछा जाए, उस पर एक साधारण सूती टॉवल है वस्त्र बिछाया जाए, तब बैठे। क्यों ऐसे करना है? बहुत ज्यादा ऊंचे बैठेंगे तो गिर पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नीचे रहेंगे तो कीड़े वीड़े आ सकते हैं, कंकर भी चुभ सकते हैं, जल भी आ सकता है। और ये जो दर्व है, मृग चर्म है, इसे नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। अभी दर्व नहीं मिलेगा, कृष्ण चर्म तो लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो फिर क्या करना? फिर सर्वसिद्धि कंबल है, शुद्ध ऊन का जो कंबल है उसको बिछाया जाए एक शुद्ध वस्त्र के ऊपर, कंबल के ऊपर भी एक सूती कपड़ा डाला जाए। कमल गर्म होता है, कृष्ण मृग चर्म भी गर्म होता है। घंटों रोज बैठने का अभ्यास करेंगे तो पाइल्स बवासीर हो जाएंगे। तत्रिकाग्रम मन कृत्वा, वहां मन को एकाग्र करना है। कि मन को एकाग्र करने के लिए क्या कहा है। यथा चित्तेन्द्रिय क्रिय, ये आपके चित्त और इंद्रिय है, उनको भी साथ में ले जाना है। मन को एकाग्र कैसे किया जाए? मन स्वतंत्र नहीं है, मन इंद्रियों से कार्य करता है। आंख देखती है कोई फूल को तो मन तोड़ने के लिए करता है, नाक में खुशबू आई कोई सुगंधी तो मन खाने को करता है, कोई नरम चीज देखे तो छूने को मन करता है। तो ऐसे ही मन जो है उसको क्या कहा, एकाग्रम मना। मन को कैसे एकाग्र किया जाए? ध्यान दें, लोग अपने घर में कोई छोटा पशु पाल लेते हैं, कुत्ता मान लीजिए पाल लिया है, तो उनको तालीम करते हैं। कैसे तालीम करते हैं कि आप इसको बंद करो महाराज, इसी को तालीम कैसे करते हैं? तो तालीम ये है कि आप उसको बुलाओ तो दौड़ के पास में आएगा, सोफा में चढ़ेगा नहीं, ना नहीं चढ़ेगा। बहुत बड़ा दीवान खंड है, उसमें बीच में एक कारपेट है, बड़ा सुंदर कारपेट है, पश्मीना सब बढ़िया है, कश्मीर का है कि ईरान का गलीचा है। तो दौड़ के आएगा, उसको शौक लगता है इसे कारपेट में नहीं जाएगा, क्यों तालीम के नो टॉमी नो ऐसे रोज बोला गया, और कारपेट में पांव रखते उसको एक थोड़ा मसाला भी मिला है, तो फिर वो उसको पता हो गया कारपेट में नहीं चलना है, सोफे के ऊपर नहीं चढ़ना है। तालीम, ऐसे मन को भी तालीम करना पड़ता है। आगे आएगी इसी बात को, यथो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम, मन जैसे जैसे बाहर रहा है उसको वापस लाओ, फिर बाहर जाएगा तो फिर वापस लाओ। इसी में आती बात, कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति वरभद्रम, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है, जबकि है जिद्दी है, मैं कहता हूं ये मत करो, वो जरूर करता है, क्या किया जाए? तो शनै शनै ऊपर हमें धीरे धीरे रोज अभ्यास करो। कैसे अभ्यास करना है? संतों ने बहुत सुंदर बात की, हमारे परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रीमद स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, देखो भाई सीधा बैठो, कहते थे बहुत कड़क नहीं बैठना और ढीला भी नहीं बैठना। फिर कहते थे आंखें बंद भी मत रखो, आंखें खुली भी मत रखो, नासाग्रह दृष्टि यहां रखो। अखंडानंद स्वामी जी बड़े प्यार से समझाते कि कहते हैं कि बंबई में रहने वाले लोगों का अधिकांश पूजा घर तो रसोई में होता है, अलग तो सबके पूजा घर होते नहीं है, तो रसोई में ही एक छोटा स्थान में कोने में भगवान जी को बैठा देते हैं। बोलते अगर वहां बैठ करके आंख बंद करके बैठे तो थक जाओगे, नींद आ जाएगी, नींद आनी आनी है, रात में नींद पूरी होती कि नहीं पता नहीं, दिन में भागना दौड़ना है, 7:52 की डबल फास्ट पकड़नी है, हाई जंप लॉन्ग जंप कैसे लोग करते हैं, भाग के दौड़ करके इतनी भीड़ में खड़े रहते हैं। वो ऐसा करते करते थका हुआ आदमी अगर शांत बैठेगा एक क्षण में नींद आ जाएगी, आंख नहीं बंद कर, खुली तो रखना नहीं, क्यों? बोले खुली रखेंगे और ध्यान क्या कर रहे, रसोई में कर रहे हैं, क्या दिखेगा? वो चाय की किटली दिखेगी और चीनी का डब्बा दिखेगा, और वो पकड़ जो होता है पतीली पकड़ने का वो दिखेगा, मैचेस दिखेगी। वो बाह्य वस्तु विषय में आपका मन जाएगा। नारायण क्या कहते थे, नासाग्रह दृष्टि, आंख उठा के नहीं देख रहे। संतों ने यह भी कहा है कि जो साधक रहे, साधक चले तो ऐसे चले दाएं बाएं नहीं देखे, केवल नीचे ही देखे रहे, अस्पर्श योगा, किसी को हाथ से तो छूना नहीं है, आंख से भी नहीं देखना है, कि अपने मार्ग को छोड़ के दाएं बाएं नहीं देखना है, कुछ नहीं। वो अष्टावक्र आए तो महर्षि जनक ने पूछा रास्ते में क्या देखा, बोले चीनी का ढेर देखा, बहुत सारी मिठाइयां रखी थी उन्होंने, केवल चीनी का ढेर देखा है। तो अष्टावक्र की अवस्था बहुत ऊपर है हमारी, इतनी ना भी हो किंतु प्रयत्न तो करना चाहिए, क्योंकि आंख जो है वही पाप का द्वार है। आंख से ये देखते हैं वो देखते हैं, कान से सुनते हैं, फिर उसी से ही मन में ये कचरा जमा होता है। बहुत सुंदर बात कही है, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा। अब मन को एकाग्र कैसे किया जाए? संतों ने कहा है कि एक दीवार है जिसमें आप एक छोटा सा कक्ष हो, छोटा सा कोना हो, जहां ध्यान करते हो, वो अपने सामने एक बिंदु लगा दो, एक छोटा सा बिंदु। मान लीजिए कि लाल बिंदु कर लो, उसके चारों ओर थोड़ा पीला कर लो, बाहर एक केसरी कर लो, एक रख लो, उसके सामने बैठो, उसको ही देखो, उसको त्राटक कहते हैं। केवल बिंदु को देखना है और किसी को नहीं देखना है। ये ब्रह्मा कुमारी लोग हैं, वो एक ज्योति की बिंदी रखते हैं, छोटी सी बिंदी, तेजमय, ज्ञानमय, अंगुष्ठमय आत्मा जैसे कहते हैं। नहीं तो आप एक दिया जला के बैठ सकते हैं, उसको त्राटक कहते हैं। विदेश में लोग मोमबत्ती जला लेते हैं, आप अपना एक दिया जलाइए, दिया जला करके रखें अपने सामने, आंखें खोल करके केवल दिए को ही देखें, दीपक की ज्योति को ही देखते चले जाएं, सीधे बैठे, स्थिर बैठे, केवल अपलक नेत्रों से, आंखें बंद ना करें, आंखें मूंदे नहीं, पलकों को नीचे न लाएं, केवल ज्योति को देखते चले जाएं, ज्योति को ही देखें, केवल ज्योति को देखें, केवल ज्योति को देखें। अब धीरे 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 आंखें थक जाएंगी, आंख बंद होना चाहेगी, मत करो, फिर बंद होना चाहेगी, मत करो। अब आंख से थोड़ा जल गिरना चालू हो गया, आंसू, आंख अपने से बंद हो जाएगी। बंद नेत्रों से भी उस ज्योति शिखा का ही दर्शन करें। बंद नेत्र में ज्योति शिखा के प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ भी ना हो, और उस ज्योति शिखा के दर्शन के बीच मध्य कोई आकस्मिक कोई विचार आ गया हमारे मानसिक तरंग पटल पर, तो विचार के साथ में उसको दृश्य भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। कभी सोचा नहीं ऐसे आता, शेर बाघ भी आ सकता है, गुलाब भी आ सकता है, भेड़ बकरी आ सकते हैं, सास ससुर भी आ सकते हैं, पति भी आ सकते हैं, सहेली दोस्त भी आ सकते हैं, गुरुजी भी आ सकते हैं, रामकृष्ण, कुछ भी आ सकता है। आए तो उनको मत जाने दो, फिर वही आंख खोल दो, फिर वही ज्योति को देखो ना। अभी हमारा अपॉइंटमेंट उस ज्योति शिखा से है, राम से नहीं है, कृष्ण से नहीं है, दुर्गा से नहीं है, शिव से नहीं है, किसी भी, केवल उसी से है। सतो निरंतर दीर्घकाल पर्यंत प्रतिदिन करते रहो, ऐसे ही बैठ करके। मान लीजिए कि 15 मिनट तक त्राटक करना है, करते ही रहो, आंख बंद हो या खुली हो, केवल दीप शिखा का दर्शन हो प्रतिदिन, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही पद्धति से ऐसे करो। मन धीरे 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 शांत हो जाएगा, मन को पता हो जाएगा ये समय जो है मेरा ध्यान करने का है। कैसे होता है? बंबई में रहने वाले अधिकांश लोग हैं 9:30-10 बजे भोजन कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा खाना साथ में लेके जाते हैं, किंतु 9:30-10 बजे कर लेते हैं। किंतु इतवार को उनका ब्रेकफास्ट ही 9 बजे होता है, लंच 1 बजे-1:30 बजे होता है। तो मान लीजिए कि श्रीमती जी ने आपको ब्रेकफास्ट है वो 9:30-9 बजे दे दिया, इतवार तो है, और कहा छटपटाना नहीं, आज लंच 1 बजे नहीं है, 2 बजे मिलेगा। क्यों, क्या बात है? ताऊ जी आ रहे हैं, उनकी फ्लाइट 12:15 की है, घर आते आते 1:45 बज जाएंगे, हाथ मुंह धोलें, सुस्ता लें तो 2 बजे। अब पता है कि 2 बजे भोजन मिलने वाला है, हर इतवार को 1 बजे मिलता है, किंतु जब 2:05 होती है तो आप रसोई में चक्कर लगाते हैं, ला 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 ला, फेटे लगाऊं, सलाद रख दूं, पानी की गिलास रखूं, आप बैठ नहीं सकते क्या? मैं नहीं कर सकती थी सब, ताऊजी भी आते ही होंगे, बैठो भी तो। 10 मिनट के बाद फिर रसोई के अंदर भी आता है, क्यों? मन को पता है आज 1 बजे भोजन नहीं मिलना था, 2 बजे मिलेगा, अभी 2 बज गया, इसलिए मन छटपटाता है। बड़ा मुश्किल काम है, मन को कहना पड़ता है ये ऐसा करना है। अगर आपको पता है सवेरे उठ करके 1 बजे मुझे यहां जाना है, तो उसके लिए शरीर मन दोनों तैयार रहेंगे। आकस्मिक सवेरे कोई आके बोलेंगे चलो, तो मन भी खुशी नहीं, शरीर भी खुशी नहीं, दोनों में से किसी एक की भी तैयारी नहीं है। अब क्या करो फिर? ऐसी अवस्था में ये बहुत जरूरी बात है कि मन को तालीम करें। जैसे कि आपका जन्मदिन है, आपका जन्मदिन कब है? साई अचो, अरे राम अचो, प्लीज कम हियर। ये ध्यान दें कि आपका जन्मदिन है, मान लीजिए कि 1 अप्रैल को आपका जन्मदिन है, तो हर महीने में 1 अप्रैल तो आती है, हर महीने में 1 अप्रैल आती है, किंतु हर महीने की 1 तारीख को आपका मन छटपटा नहीं है। वो 31 मार्च आने के तक वो 1 तारीख को जन्मदिन है। क्या होता है, आपके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको 1 अप्रैल दिमाग के अंदर में एक रस उत्पन्न कर देता है। बहुत जरूरी बात है, इसको समझना। बिना मन के सहकार के आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, मन को तालीम करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज हैं, वो क्यों जीतते थे औरंगजेब से? क्योंकि शिवाजी महाराज ने कभी औरंगजेब से सीधी लड़ाई ही नहीं की, कभी भी छुप के आएंगे किधर से भी, सेना का नाश करके फिर पहाड़ियों में चले जाएंगे। औरंगजेब की सेना प्लेन से आती थी और यहां महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां हैं उनसे परिचित नहीं थे। एक सकरी जगह में से निकलेंगे तो ऊपर से गर्म पानी डाल देना, पत्थर डाल देना, आधी सेना को वहीं किचड़ के रख देना। ऐसे कभी नहीं सोचना कि मेरा मन शांत हो गया है, भरोसा नहीं है। जो मन शांत दिखता है वो एक चुप करके बैठे हुए सांप के माफिक है। नहीं नहीं, अब मेरे मन में कोई विकार नहीं है, मेरे मन में कोई अभद्रता नहीं है, मन में कोई असूचि नहीं है। वो हाथ कभी लग गया सांप को, कैसे फुत्कार करता है, मन भी ऐसा ही है। मन कब जाकर के अपना रूप रंग दिखाएगा, भरोसा नहीं है। दिखता तो है हम शांत हो गए हैं, मन में विकार नहीं है, इंद्रियों में कोई क्लेश नहीं है, ऐसा लगता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट ना। मन का तो अपना चंचल स्वभाव है ही, चंचलम ही मन कृष्ण, मन का स्वभाव ही चंचल है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, अरे भाई तुम्हारा मन नहीं है, कॉस्मिक माइंड इज लाइक दैट ओनली। वो ऐसा ही है, क्या करना, बहुत धीरे धीरे। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा बाड़ा है, बड़ा मैंने एक थोड़ा बगीचे के माफिक, उसको फैंसी है, लॉन बहुत सारी है, उसमें एक खूंट है, खूंट बहुत बड़ा, बुल बोलते हैं, बुल, वाइल्ड बुल है। अभी हम बोल देंगे आप जाओ भाई अंदर जाओ, उसको लड़ा प्यार करके आओ, वो मार के रख देगा वो आपको, नहीं आ, किसके आने से करेगा, शेर को भी मार सकता है बुल। तो आप क्या करो, एक ही समय जाओ, बोलिए एक ही समय जाओ, एक ही ढंग से जाओ, एक ही स्थान पर जाओ, रोज हाथ में थोड़ा हरा घास पकड़ के जाओ और उस बाड़ के पीछे, उस फैंसी के पीछे खड़े हो जाओ। आपको उधर खड़ा हुआ देख करके बुल खुश नहीं होता है, किंतु आपके हाथ से जो घास है करके ले लेता है। रोज जाओ, एक ही समय में जाओ, प्रतिदिन जाओ, वो घास लेके जाना, वहीं खड़े हो जाओ। फिर अभी आपको पता हो जाएगा कि ये बुल जब आता है पहले जैसे खप नहीं करता है, अब उसकी चाल में फर्क हो गया है। 10-20 दिन के बाद में उसको पता हो जाएगा कि हमारा दोस्त है, आपको दिखने से मटकता मटकता आता है, अभी खप करके नहीं लेता है, अभी शांति से लेता है, शांति से एक एक लेके चबाता है। अब 1 महीना हो गया, हिम्मत करके अंदर चले जाओ, आपका उस फैंसी में बाड़े में आना जो है बुल को पसंद नहीं, किंतु मारेगा नहीं, क्यों, जानता है कि मेरा घास वाला दोस्त है। फिर आप उसको घास दे दो, दो 1 महीना और, अभी आपको देखने से फिर मटकते मटकते आता है, पहले आंख गर्म करता था अंदर क्यों आए। अभी 3रा महीना हो गया, जब घास खाता है तो थोड़ा उसको नाक के ऊपर, कपाल के ऊपर, गले में हाथ फिराओ, यू वॉन्ट अप्रिशिएट इट, तुम उसको क्यों टच किए, मगर मारेगा नहीं, क्यों, मेरा दोस्त है, रोज आता है, घास देता है, मेरा पहचान है, इज नॉट ए हार्मफुल पर्सन, इज माई फ्रेंड, माई वेल विशर। वो ऐसे करके करके रोज आता रहे, रोज। अब तीन महीना हो गया, उसके बाद भी पूरे बदन में उसको आते रहो। चौथे महीने में कुछ भी मत करो, खाली जाओ, आपको देखेगा वो गले में ऐसे हाथ डाल लेना, प्यार कर लेना। पांचवें महीने में उसके ऊपर बैठ जाना, बस कोई मुश्किल बात नहीं है। वो बहुत पुरानी एक सिनेमा थी, बहुत पुरानी, ऐसा मान लीजिए कि ओ 66-67 में, मुझको नाम याद नहीं, छोटी सिनेमा थी। उसको राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल मिला था। कोई एक आदमी है, शिकारी है, वो गुजरात में आ गया शिकार करने के लिए। क्या शिकार करेगा? ओ पंछी आते हैं ना विदेश से, उनको शिकार करता हूं। वो बंदूक लेके आया, गांव को बताया था फला फला साहब आने वाला है। तो गांव में क्या था, कोई आया तो फिर बैलगाड़ी भेज देते थे, तो मुखी ने बैलगाड़ी भेज दिया था। तो बैलगाड़ी में बैठ के वो आ रहा था साहब, उसका नाम था भुवन सोम, सिनेमा का नाम था भुवन सोम। ये बैलगाड़ी में बैठ के आ रहा है, सामने से एक बूढ़ा बफेलो, मेल बफेलो, पड़ा भयंकर है। वो इतना आ रहा है, यूं करके आ रहा है, उसको देखने से बैलगाड़ी के दोनों बैल डर गए, ऐसे डरे उठा के भागे, ऐसे इतना जोर से पांव उठा के भागे। ओ तो जो साहब आया था बंदूक लेके वो इधर गिरा, और वो बैलगाड़ी वाला है वो भी उधर गिरा, बैल भाग निकले, बैलगाड़ी भी ले गए। अभी वो बैलगाड़ी वाला तो जानता था रास्ता, कहीं भाग गया वो जंगल के बीच, ये कहां जाएगा। वो पाड़ा उसके सामने आ रहा करके, एक पेड़ में चढ़ गया। पेड़ छोटा था, बड़ा नहीं था, तो ये पाड़ा उस पेड़ को हिला रहा है। पाड़े के पीछे उनके मालिक की बेटी आ रही है, कितने साल की है, 6 साल की है, हाथ में छोटा सा एक दातुन वाला डंडी होता है ना लेकर के। उसने देखा साहब ऊपर है, वो बंदूक लेकर के कांप रहे हैं और ये पाड़ा हिला रहा है। वो बिटिया ने क्या कहा, शीतल, से नाम बताया शीतल है, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको, शीतल ये हमारे मेहमान हैं, आजा आजा मेरा दोस्त, वापस आओ। बस उसने इसे बोल दिया, वापस आ गया, वापस आ गया, कान पकड़ा उसने, मेहमान है ऐसा नहीं करते, सांप नीचे आओ, नीचे आओ, नहीं डांटेगा। और सांप कांप रहा है, बंदूक है उसके हाथ में, शिकार करने आया है, कितना दूर से आया है, बहुत बड़ा साहब है, उसके लिए बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी के बैल भाग गए, बैलगाड़ी वाला भी भाग गया, और अभी भी कांप रहा है। साहब आओ ना, कोई चिंता नहीं, चलो मारो हाथ पकड़ो। वो एक हाथ से शीतल का कान पकड़िए, वो बफेलो का भयंकर, एक हाथ से सांप का हाथ पकड़िए, देखिए कैसे होता है। वाइल्ड से वाइल्ड एनिमल भी आपका दोस्त बन सकता है, तालीम से, तालीम करना पड़ेगा। जो बहुत भयंकर कुत्ते होते हैं, शेर के माफिक होते हैं, किंतु उनके मालिक के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, उनके साथ में ये लोग सोते हैं, उसी एयर कंडीशन में सो जाते हैं। ये लोग उनके सिर में सिर रखकर सोते हैं, वो अपना सिर इनके सिर में रखकर सोता है, उनसे प्यार है। किंतु जो बाहर कोई आया तो खत्म, खा लूंगा तेरे को। मन का भी ऐसा है, तालीम करना पड़ेगा धीरे धीरे। मन को कहां जाना है मत जाने दो, नहीं समझाओ, नहीं जाते, उचित नहीं है, फिर बैठो। प्रतिदिन एक स्थान में धीरे धीरे ध्यान में बैठने का अभ्यास है, एक ही ढंग से, एक ही रूप से, एक ही प्रकार से, एक ही तरह से। रोज रोज गुरु नहीं बदली करना चाहिए, न मंत्र भी नहीं बदली करना चाहिए। क्या गुरु आवश्यक होते हैं? बहुत जरूरी है। कुकार अंधकारश्च तुकारतन निरोधक, एक अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए गुरु जो है ना, उनसे आप शिष्यत्व स्वीकार करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रह्म संबंध। आपका जो संबंध है उन्होंने ब्रह्म से किया है, परमात्मा से किया है। ध्यान दें, काफी लोग क्या करते हैं, ये जो म्युनिसिपैलिटी की जो लाइन होती है उससे डायरेक्ट कनेक्शन है, लोग बाग अपने घर में ले लेते हैं। यहां की बात नहीं है, हमारे हरिद्वार के बड़े बड़े महात्मा लोग भी बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करते हैं ना, वो ऑफिशियल नहीं करते ना। हम जानते हैं एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर को, उन्होंने मुरारी बाबू की कथा कराई, तो उनके जो आयोजक थे उन्होंने वो लोकल जो स्ट्रीट में जो देखभाल करता उसको बुलाया, 5,000 रूपये दे दिए, कथा पूरा होने के बाद 5,000 और दे देंगे, उधर से तू लाइन दे दे और थोड़ा एक दोस्त हमारे साहब लोगों को बुलाना, उनको भी 10,000 दे देंगे। तो ये ज्यादा लंबा क्या किटकिट करना है, तो उन्होंने ऊपर से कम्बे से लाइन दे दी। अब कोई सिर फिरा अधिकारी था उसको पता हो गया, तो जिस समय मुरारी बाबू कथा का प्रारंभ करेंगे, जिस समय दो गवर्नर आएंगे, तीन चीफ मिनिस्टर आएंगे, उसको काट दिया। ओ उनका तो कटे कटे, वो आपके जो चैनल्स में लाइव टीवी दिखाते हैं आस्था, उनके सबके लाइट बंद हो गए। अभी क्या करना है, दो गवर्नर हैं, तीन मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में 50,000 लोग भी बैठे हैं, कौन मुरारी बापू बोलने से कौन सुनता है, उधर कोई नहीं सुनता है। अभी वो उनको बताया, वो बोले कि सबसे पहले तो पेनल्टी भरो। उन्होंने क्या किया, पता कर लिया किस आदमी ने दिया है, उसको पकड़ करके बंद करके रख दिया, ताकि वो 10 दिन तक कोई उसको पकड़ ही नहीं पाए, उसके बाद में चिट्ठी चपाटी बाद में करेंगे। क्या हो गया भाई, बोले पहले तो पेनल्टी भरो कि तुमने गुनाह किया उसका। क्या है, आज तो संडे है तो कल भरना, आज कथा नहीं होगी। बड़ा मुश्किल करके रख दिया उसने, आज नहीं होगी कथा, आज नहीं देंगे, कल भरो पेनल्टी, उसके बाद में एप्लीकेशन दो, तब क्रम से जैसे होता है वैसे होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपने अधिकार से कायदे से नहीं किया है। हम अपना मंत्र ये है पढ़ ले, पढ़ा बुरी बात नहीं है, किंतु अधिकार से किसी महात्मा के पास से विधि से उसको सुनने की बात किए तो उसकी अपनी असर होती है। गुरु हैं वो, उनकी क्या इच्छा होती है, 4 किलो आम लेके जाएं, 1 रेशमी वस्त्र लेके जाएं, फूल के माला 1100 रूपया, नहीं, गुरु यही चाहते हैं चेला है उसका आत्मकल्याण हो। चेले की आत्मकल्याण के अतिरिक्त गुरु के मन में और कोई भी भाव नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं, वस्तुता नहीं होता है, अगर होता है तो गुरु नहीं है, वो मतलब ही पट्टू है, बहुत सीधी बात है। हाँ, और कृषि करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुमको ये मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे नहीं है। संत तो करुणा वाले, संत तो क्षमाशील है, संत तो उदारशील है, संत के हृदय है द्रवित होते हैं, संत तो बड़े पवित्र चरित्र होते हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरा जीवन ऊंचा उठा है, इनका और भी ज्यादा उठे, इनका और भी ज्यादा। हमारे गुरुदेव हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज, उनका जन्मदिन मनता था, वो अपने चेलों का जन्मदिन मनाते थे, कहते थे स्वामी कृष्णानंद जी का जन्मदिन मनाया जाए तो वो भारतीय संस्कृति का जन्मदिन मना रहे, ऐसा कहते थे। और वो खुद नीचे बैठते थे, कृष्णानंद स्वामी जी आप पंचदशी का प्रवचन कीजिए, आई विल बी योर फर्स्ट स्टूडेंट, सवेरे 4:30 से 6 बजे तक कृष्णानंद स्वामी जी, स्टूडेंट ऑफ ए डिसाइपल ऑफ ए चेला ऑफ स्वामी शिवानंद जी महाराज, कहा शिवानंद जी स्वामी जी की टावरिंग पर्सनालिटी कृष्णानंद स्वामी जी तो नहीं, किंतु कृष्णानंद स्वामी जी की मेधा है वो शंकराचार्य के समान थी। ऊपर बैठते थे गुरु महाराज, नीचे बैठते थे। तो गुरुदेव गुरु लोग होते हैं, वो चेले को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए बहुत, हर गुरु के मन में होता है, जैसे हर पिता के मन में होता है मेरा बेटा है अच्छे से अच्छा करे, तो हर गुरु भी यह चाहते हैं कि हमारा चेला है अच्छे से अच्छा करे। तो ये गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु की शरणागति होना चाहिए, गुरु के प्रति अपना संपूर्ण क्या बोलते हैं सरेंडर होना चाहिए, मेरा अपना कोई विचार ही नहीं हो। वो एक सुंदर कथानक भी है ऐसे कि गुरु महाराज के पास में कोई एक बंदा गया कि महाराज जी मुझे आप मंत्र दीक्षा से दीक्षित करो, उन्होंने कहा ऐसे करो जीवन में किसी भी वस्तु विषय की जो कीमत ना हो लेके आओ। वो क्या बात है, बाहर से गया थोड़ा हाथ में मिट्टी उठा लिया, वो मिट्टी को वहां जा गई, भाई तुम मुझे क्यों उठा रहे हो, उन्होंने कहा देखो भाई मेरे गुरु ने कहा जिसके कोई काम नहीं हो फालतू हो, अरे क्या मैं फालतू हूं, गेहूं मेरे में होता है, चना मेरे में होता है, चावल मेरे में होता है, आम मेरे में होता है, एप्पल मेरे में होता है, ये फल फुलादि सब है मेरे हृदय में से पैदा होते, मैं फालतू का छोड़। पत्थर को उठाए, पत्थर बोले तेरी सर्दी तेरी गर्मी तेरी बारिश रक्षा करने वाला मकान तो मैं बनाता हूं, छोड़। कोई चीज बोले तो ऐसा होता था, फिर किसी ने विष्ठा मल का त्याग किया था उसको उठाए, वो विष्ठा को भी आवाज आ गई, अरे नालायक तू है मैं नहीं हूं, कल रात में रसगुल्ला रबड़ी मालपुआ
चटनी पापड़ नहीं थी, मेरी ऐसी हालत तुमने की है, तुम ना लायक हो। अपने पास गुरु के पास जाके बोलो, गुरु जी मैं ही ना लायक हूं, जाओ। वो हाथ पोंछ धोए, नहाया, कपड़े बदले, महाराज इस जगत में सभी चीज का उपयोग है, नालायक तो मैं ही हूं, बिना योग्य का जगत में कुछ भी नहीं। गुरु बोले अब उचित है, बैठ, आमंत्रण दीक्षा ले। गुरु के शरण में जाए तो अहंकार को बाहर के जाए, अहंकार शून्य। इदम तूते गुह्य तमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, नवे अध्याय में जो कि हमारा है अध्याय, उसको हम कहते हैं किंगली साइंस द किंगली सीक्रेट, ज्ञान विज्ञान योग। क्या कहते हैं? ये परम ग्रहण ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम निष्कपट हो। 15वें अध्याय में फिर से कहा, यदि गुह्यतम शास्त्र में मुक्तम मया न, कि मैंने तुमको ये ज्ञान दिया क्योंकि तुम निष्पाप हो। तो शिष्य है, ध्यान करना चाहे तो निष्कपट हो, शिष्य निष्पाप हो, गुरु के श्री चरण में उनकी संपूर्ण शरणागति हो। मैं हूं नहीं हूं, इसको बहुत सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, बोलिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? ए डेंटिंग ऑफ द आई इज माई आइडेंटिटी। डेंटिंग मैंने तोड़ देना, अपने आई, अपने अहंकार को जीरो। तब दासो हम, तब दासो हम, दासो हम तब दास से, सूरदास, रैदास, कनकदास, रामदास, नानकदास, तुलसीदास, कबीरदास, इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को दास कहते हैं। भृत्यस्य 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 भृत्य, अरे वो तो कौन है? वो आपके चाकर के चाकर के चाकर का चाकर है। ऐसी भावना होती क्या? अगर आप ऐसी भावना से जाओ, अपने आप को खाली कर लो, बस भर जाओगे। जहां हवा में वातावरण में दबाव कम होता है वहीं सुनामी आ जाती है, वहीं चक्रवात आ जाता है। अपने आप को रिक्त कर दो। हे दास, मैं गुरु, आई नो नथिंग, मुझे कुछ पता नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। बस फिर गुरु का कार्य है, अपनी स्लेट साफ रखो, उसमें क्या लिखना वो गुरु लिख देंगे। गुरु की बहुत आवश्यकता है। हाँ, तन मन वारू गुरु चरणन पर, जब पाऊं दरस बली बली हो जाऊं। रीझे तो रिझाओ गुरु को, गुरु नहीं माने तो गुण नहीं आवे, गुनी अन में बे गुनी कहावे। गुरु है वो सबसे श्रेष्ठ है, ध्यान में बहुत आवश्यक है, मंत्र भी होना चाहिए। जैसे कि एक लड़की है, वो यंग लड़की हो गई है, 17 साल 18 साल कॉलेज में पढ़ती है, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ में नाचती है, कूदती है, पिकनिक जाती है, ठंडा लाल होना वाला सब घूम घाम के आएगी, किसके स्कूटर में जाती है, इसके कार में, दोस्त ही सब, यार दोस्त सब मिलके नाचते कूदते, कब तक? जब तक उसकी सगाई नहीं हो गई तब तक। एक बार उसका एंगेजमेंट हो गया, फिर वो लड़कों के साथ में ज्यादा नाचेगी कूदेगी नहीं, जाएगी भी नहीं। क्यों? अब मेरे लिए एक मेरा पति ठीक किया गया है, मैं उस घर की बहू होने वाली हूं, मेरी मर्यादा है, मेरा उछलना कूदना अब उचित नहीं है। और एक बार जब शादी हो गई, बस खत्म, फिर मेरे कमरे में मेरे पति को छोड़ के कोई भी नहीं आएगा। मेरे दोस्त रहे ना पति के दोस्त रहे, मेरे संबंधी रहे कि पति के संबंधी रहे, उन तमाम को हम बाहर बैठाएंगे, चाय देंगे, नाश्ता देंगे, अगर वो बीमार है, हमारे घर में अतिथि है, गर्म पानी देंगे, ठंडा पानी देंगे, हाथ पांव भी दबा देंगे, किंतु वो मेरे शयन खंड में नहीं आएंगे, मेरे निजी कमरे में नहीं आएंगे। ऐसे ही कितने संत आते रहे हैं, हर संत का स्वागत करो, हर संत का सम्मान करो, हर संत की पूजा दो, हर संत को भेंट दो, हर संत को वस्त्र दो, किंतु हर संत से मंत्र मत ले। ये आप तमाम संतों के सेवा करना चाहिए। कैसे? जैसे कि एक बार एक लड़की की शादी हो गई तो वो दूसरों की शादियों में जा सकती है, हाथ में मेहंदी लगा सकती है, हाथ में चूड़ियां पहन सकती है, वो फिर वो घरचोड़ू पहरी सके, इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर सके, और उधर शादी की जाकर के तू तक तू तक तू तिया ए जमा लो, हाथ उठा के नाचे भी, किंतु फिर किसके हाथ में हाथ पकड़ करके वो फेरा नहीं फरना है। एक गुरु के पास में शरणागति स्वीकार किए, एक गुरु के पास में मंत्र दीक्षा ले लिए, उसके प्रति ही हमारी पूरी निष्ठा हो, किंतु दूसरे किसी भी महात्मा किसी गुरु की निंदा ना करे, नहीं, वो किसकी गुरु की निंदा करना, वो अपने गुरु की निंदा है। किसके गुरु का हमेशा ऊंचा बोलना, वो हमारे गुरु के संस्कार के द्वारा होता है। हमेशा कोई महात्मा रहे उनके लिए अच्छा ही बोलना चाहिए, उनके लिए कल्याण की बात ही बोलना चाहिए, उसके लिए अच्छा ही करना चाहिए। हमेशा सबके लिए अच्छा बोले तो फिर हमारा वाइब्रेशन भी अच्छा होता है। तो मंत्र तो होना चाहिए, तो फिर मंत्र क्या एक हो? हाँ, रोज रोज नहीं बदली करना, एक ही मंत्र हो। गुरु नहीं बदली करना, मंत्र भी नहीं बदली करना, स्थान भी नहीं कर, तत्र एकाग्र मन कृत्वा, ये जब मंत्र का जब जप करते चले जाएंगे, मंत्र जितना जपते जपते अंदर जाएगा, मंत्र का स्वरूप, मंत्र जिसने दिया है उसका स्वरूप, मंत्र के जो देवता हैं प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि जब गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु की अपनी शक्ति है, वो आपको शक्ति पात करते, गुरु का स्पर्श। कुछ लोग जल डालते हैं, कुछ लोग मोर पीठ से स्पर्श करते हैं, कुछ लोग कपाल में, जैसे जैसे जिनकी जिनकी पद्धतियां हैं, तो गुरु जो है वो आपको शक्ति प्राप्त करते हैं। तो गुरु अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना से अपने आप को आपके साथ में जोड़ देते हैं। जब आप मंत्र का जप करते हो तो गुरु की शक्ति उसमें आती है, मंत्र है उसके देवता की शक्ति आती है। हर मंत्र का अपना एक छंद होता है, वो छंद है उसकी शक्ति आती है। हर मंत्र के एक ऋषि होते हैं, क्या बोलते हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं, वो हमारे गायत्री मंत्र के ऋषि हैं। तो हर मंत्र के एक ऋषि, तो जब मंत्र जब करेंगे तो ऋषि हैं उनकी भी आएगी, और इष्ट जो है मंत्र का इष्ट देवता, उनकी तो कृपा होती है। तो मंत्र के इष्ट, मंत्र के देवता, मंत्र के ऋषि, मंत्र के छंद और गुरु, इन तमाम की कृपा मंत्र जप में जलती है। जितना मंत्र आपके भीतर जाएगा उतना ये तमाम संतों की, तत्वों की, गुरु की, परमात्मा की कृपा अंदर से प्रकट हो जाएगी, एक रूहानियत हो जाएगी। इतनी हो जाएगी रूहानियत कि आप जहां बैठे हैं सभी के मंगल की कामना करेंगे, आपके चरण जहां चले जाए वहां सब पवित्र हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, महाराज जी के हाथ से हमें शिलान्यास करवाना है। क्यों कराते हैं? महाराज जी के हाथ से हमारा छोटा बच्चा है उसको अन्न प्राशन कराना है, पहली बार अन्न देना है, चावल दूध में पका हुआ खीर, महाराज जी आपके हाथ से अन्न प्राशन करेंगे। महाराज जी नाई काटने के पहले ये बाल जो है थोड़ा आप पहले काटेंगे। हाँ, महाराज जी अक्षराभ्यास है हमारे बच्चे को लेके आएंगे, पहला ओमकार है आपके हाथ से लिखाएंगे। अक्षराभ्यास गुरु के हाथ से लॉन्च करना है, गुरु के हाथ से अन्न प्राशन करना है, गुरु के हाथ से मकान में शिलान्यास है, गुरु के हाथ में। महाराज जी हमारे बेटे के शादी में तो आपने आना ही है। अरे शादी का नहीं महाराज जी, वो आप ही की तो बेटिया है। गुरु कुछ ना करे, अपने कमरे में बैठे किंतु उनकी उपस्थिति, क्यों? समझते हैं गुरु हमारे तन मन धन है, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का वही दाता नारायण भगवान। तो गुरु को देखिए तो प्रत्यक्ष नारायण के दर्शन है, ऐसे देखना चाहिए। क्या कहा? तत्र एकाग्र मन कृत्वा, तो मन कैसे एकाग्र होगा? जप से होगा। रोज जप कीजिए, सुबह दोपहर शाम रात। किंतु जब ध्यान करने बैठेंगे एक स्थान में बैठ के थोड़ी देर तक जप कीजिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ओंकार है उसका जप करना चाहिए, खाली सीधे बैठ करके हो ऐसा कम से कम 5 मिनट तक कीजिए। क्या होता क्या है, देखिए हम लोग जो सांस लेते हैं वो 1 मिनट में हम कम से कम एवरेज 15 सांस लेते हैं। सांस लेते ही उनकी हमारे शरीर की अवस्था क्या है, बोलिए बैठत 12, बोलिए बैठत 12, बैठत 12, चले 18, बैठत 12, चले 18, दौड़े में 20-20, 20 और 20 40 हो गया, दौड़े में 20-20, काम क्रोध में चले 72, काम क्रोध में चले 72, कहते हैं दास घसीटा। देखिए बैठे तो सांस 12 चलती है, खड़े हो जाए चले थोड़ा तो 15 हो जाती है, 18 हो जाती है, और दौड़े तो 40 है, गुस्सा हो गया, हवस हो गया तो कितना 72 हो जाएगा। तो कितना चाहिए हमको? 15 है। एक मिनट में एवरेज साधारण रूप से हम 15 सांस लेते हैं। अभी ध्यान दें, एक मिनट में अगर हम 15 सांस लेते हैं तो एक सांस कितनी हुई? 4 सेकंड की हो गई। कितनी हो गई बोलिए? 4 सेकंड की। जब आप ओंकार करेंगे हो, एक मिनट में 4 ओंकार होते हैं। पहले क्या था, एक मिनट में 15 सांस लेते हैं, हर सांस 4 सेकंड का होता है, और जब ओंकार करते हैं तो एक मिनट में 4 ओंकार होता है, तो हर ओंकार है वो 15 सेकंड का होता है। साधारण सांस 4 सेकंड की है, ओंकार 15 सेकंड का है, तो हर ओंकार आपको 11 सेकंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेशन देता है। ध्यान दें, आज जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है उसको डॉक्टर जे एस गोर्डन, जो हमारे ही विद्यार्थी है, वो अमेरिका में बैठ के पढ़ाते हैं, 3 दिन बुलाएंगे आपको, सोम बुध शुक्र, एक एक घंटा, $1,000 लेते हैं इतनी बात बताने के लिए, $1,000 आपको फ्री में मिल रहा है। कृष्ण भगवान ने पहले ढोल बजा करके बोल दिया, उत्क्रांत मंत सितम वापी बुंजान हुआ गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु सारी। तुम बाहर देखते हो, थोड़ा भीतर देखने की कोशिश करो। ये कल प्रातःकाल में ये प्रवचन की श्रृंखला है, उसको विराम रहेगा, फिर छठा अध्याय अगले साल अगर हम आप दोनों रहे तो अगले साल सुनाएंगे। आपको दक्षिणा तो देना ही चाहिए, तो मेरी दक्षिणा यही है, आज से नियम करो, रात में सोने के पहले 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ओंकार करो, सुबह उठने के साथ में पहला काम ओंकार करो। महाराज जी बिस्तर में कर सकते हैं? नहीं, बिस्तर में नहीं करना, क्योंकि जिस कमरे में आप लेटते हो उसमें और भी कोई हो सकते हैं लोग, बिस्तर में नहीं, जहां सोते हो उसमें मत करो, नीचे बैठो, कहीं आसन लगा के खुले में बैठो, वरंडा में बैठो, छत में बैठो, नजदीक के बगीचे में चले जाओ, बैठ करके 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ओंकार करो। स्टार्ट योर डे विथ ओंकार, एंड योर डे विथ ओंकार। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अकार उकार मकार ओम, ये क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मां की पिता की आवश्यकता नहीं, पहले सांस की आवश्यकता होती है, माता पिता से अधिक उसकी आवश्यकता है सांस। तो सांस के बारे में हम कुछ जानते नहीं, सांस तो पहले चाहिए हमको। और दूसरा है, बच्चा जो बोलने लग सकता है तो सबसे पहले अ बोलता है, आ, आ, बाद में बोलता है वो, बाद में मम मम मा 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 मा, ये अकार उकार मकार से तो ओंकार हो गया है। प्रथम आदि शब्द ब्रह्म प्रगट है, वेद रटत ब्रह्म रटत, शेष रटत शंभु रटत, नारद शुक व्यास रटत, पावत नहीं पार जाको, वेद रटत ब्रह्म रटत, कुंती के कुंवर रटत, द्रौपदी के सूत रटत, नारद शुक व्यास रटत, पावत नहीं पार जाको, वेद रटत प्रथम नाम ओंकार, पायो नहीं कोई पार। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है संशोधन कर रहे हैं, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी संशोधन कर रही है अमेरिका में, ये ट्रिशान में एक एरिजोना में यूनिवर्सिटी है, हार्ट में होते हैं, काम द माइंड एंड हील द हार्ट, मन शांत हो जाएगा तो आपके हार्ट की समस्याएं चली जाएंगी। काम द माइंड, मन में कोई भी उत्पात नहीं। मन कैसा, जैसे कि हवा चलती नहीं तो दिए की लौ कैसे शांत रहती है, हवा नहीं चलती है तो तालाब का पानी कैसे एक जैसे कि कांच बिछा हुआ है लंबा चौड़ा उतना स्थिर रहता है, ऐसे आपका मन हमेशा शांत रहे। काम द माइंड, मन ऐसे रहेगा, हिल द हार्ट, हिल हिल उस पर कितना बड़ा संशोधन। इस बार हमको एरिजोना में यूनिवर्सिटी में वो पूरा कार्डियोलॉजिस्ट है महाराज जी के 450 लोग, सारे गोरे, सारे हार्ट के डॉक्टर, एक एक डॉक्टर ऐसे हैं जिन लोगों ने कम से कम 4-4, 5-5 हजार हार्ट ट्रांसप्लांट किया हो, एक एक डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 10-15 हजार बाईपास सर्जरी किया हो। ऐसे लोग बैठ के सुनते हैं, क्यों हम तो पैसा नहीं पूछते ना आपसे। वो जेएस गोर्डन है, वो $1,000 लेता है, माइंड बॉडी एंड मेडिसिन नाम के संस्था है उनकी, वो वॉशिंगटन डीसी में $1,000 लेता है। ध्यान दें फिर से, अपना स्थान में बैठना है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करने के लिए ओमकार करो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, मन शांत हो जाएगा, मन के वातावरण से इधर से उधर से निकल जाएंगे। रात में सोने के पहले भी ओमकार करके लेटिए, अगर समय है भोजन के पहले थोड़ा और कर लीजिए। ये आप क्या करते हो, ये आपकी पत्नी के, आपको, बच्चों को, आपके पति को बताओ, नहीं तो क्या होगा, सवेरे सवेरे आप बैठ करके ओम करेंगे हाँ तो पत्नी क्या बोलेगी, हजी हूं जीती छू फोक मुकी नशा माटे रड़ो छो, अभी मैं जिंदा हूं, सिर फोड़ के क्यों रोना चालू करते हो सवेरे सवेरे, लोग बात क्या सोचेंगे हाँ। तो ये नहीं, उनको पता ना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उनको भी सिखाओ, बच्चों को जरूर सिखाओ। अरे बच्चे ओमकार करते रहेंगे, उनके सेरेब्रल सिस्टम है उसमें बड़ा खून आएगा। जब आप पांव को चौकड़ी मार के बैठते हो, भाई साहब खड़े हो जाइए, आप यहां खड़े हो जाइए, इधर उनके उधर मुंह करके अपना हार्ट में हाथ रखो, देखो जब खड़े रहते हैं हमारा दिल तो यहां ऊपर होता है, तो सिर ऊपर है और पांव नीचे है, जैसे कि हम नहा रहे हैं और नीचे 4 माला 3 माला 2 माला में किसने नल चालू किया तो हमारे पानी का फोर्स कम होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए क्योंकि बहुत ऊंचा मकान रहे 22-36-40 है तो सबसे ज्यादा फोर्स में पानी किसको आएगा, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, नीचे आएगा। तो जैसे हम खड़े रहते हैं तो हमारे जो पांव हैं उनको खून ज्यादा मिलता है। और अभी जैसे कि धन्यवाद भाई साहब, बड़ी कृपा, बैठे। और जैसे कि आप कुर्सी में बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं तब भी आपका पांव नीचे लटकता है। जिन लोगों को अभ्यास नहीं, यहां से पुणे चले जाए, यहां से शिरडी चले जाए तो वहां जाते जाते पांव में सूजन हो जाती है। क्यों होती है, खून जो ज्यादा जाता है। और ये पुलिस लोग जो खड़े रहते हैं दिन भर और जो सेल्समैन खड़े रहते हैं, जैन साधु साध्वी जी लोग होते हैं चलते रहते हैं, दे बिकम ए विक्टिम ऑफ ए वेरिकोस वेन्स, उनके जो काफ मसल्स होते हैं उनकी नसें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। तो चौड़ी हो जाने से क्या होता है, खून जितने समय में घूमना चाहिए उतना नहीं घूमता है। बहुत जरूरी बात है, पलाठी मार करके, चौकड़ी मार के, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं कैसा पांव रखे, ऐसे बैठने का अभ्यास करो। क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है, खून के घूमने की गति और दिशा नाभि के नीचे कम होगी, नाभि के नीचे कम होगी तो किसको मिलेगी, पेट को मिलेगी, पाचन क्रिया अच्छी होगी, पाचन क्रिया अच्छी होने से अपच नहीं होगा, अपच नहीं होने से गैस नहीं होगा, गैस नहीं होने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन में ही घुटनों का दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन में ही कमर का दर्द होता है। अधिकांश महिलाओं को पूछो, 100 में से 85% महिलाएं कहेंगी घोड़े में दर्द है, कमर में दर्द है, आंखों में जलन है। तो लुकोरिया तो होता ही है, क्यों, अचार तो बहुत खाते हैं, तेल मिर्ची खटाई भी बहुत खाते हैं, प्याज लहसुन छक्के खाते हैं, दूध पीते नहीं है, दही खाते नहीं है, सलाद खाते नहीं है, और एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या लुकोरिया नहीं होगा तो क्या होगा, कि इनको बोलते हैं क्रॉनिक कोलाइटिस, जो आंत है वो स्वप्नी साफ नहीं होती है। क्या ये ध्यान के प्रकरण में इनका सबका संबंध है, क्या पूछेंगे, पूरा संबंध है, ये पूरा संबंध है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है आप क्या ध्यान करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष तमाम के लिए आरोग्य अच्छा चाहिए। एक ध्यान में क्या कहते हैं, समम क्या बोला है, यथा चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासन युंजात, क्या कहा है, आत्मविशुद्धि का समम काय शिरोग्रीवम, आपका जो सिर है काया है उसको एक लाइन में सीधा बैठना है, क्या क्यों होता है? ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, एक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें आपकी एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी लेके जाओ, बेंज गाड़ी लेके जाओ, सीधे रास्ते में लेके जाओ, तो सीधे रास्ते में जिस गति से वो गाड़ी जाएगी, क्या वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाएगी? क्या नहीं जाएगी। तो ऐसे ही आप जो है यूं बैठते हो ऐसे करके कहीं कुछ कुछ करके बैठ जाते हो, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आपने भगवान बुद्ध की छवि को देखा है, मूर्ति को देखा है, भगवान महावीर को देखा है, हनुमान जी महाराज ध्यान करते, अरे शांतम पद्मासनस्थम शशधरम गुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम च खड़गम परशुम भेदम दक्षिणांगे वहंतम नागम पाशम च घंटाम डमरुक सहितम शांकुशम वाम भागे नानालंकार दीप्तम स्फटिकमणि निभम पार्वती शम नमामि। आप क्या कहते हैं? आपको जीवन में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। कितने प्रकार की तकलीफ के बीच में महादेव क्यों महादेव, वो शांत क्यों रहते हैं? हाँ महादेव हैं, वो बैठने का उनका होता है नंदी और गले में रखते हैं सांप, और पार्वती का है क्या है शेर है, तो पार्वती का जो सिंह है वो महादेव के नंदी को खाने के लिए लगता है। अभी जो गले में जो शिवजी के जो सांप है, ये सांप गणेश के चूहे को खाने को चाहते हैं, किंतु कार्तिकेयन का जो मोर है वो गणेश शिवजी के सांप को खाना चाहता है, और जो गणेश का चूहा है वो मोर के पंख काटने को चाहता है। अब बताओ कैसे एक घर में झमेला कितना है। हाँ कोई शांति नहीं है, पूरी लड़ाई है। और शिवजी ने तुम्हारे महादेव जी तो बेबे छे रानी, हाँ तुम्हारी तो दो रानी है, माते तो गंगाधरी पार्वती आनी, सिर में जो गंगा थी तो पार्वती क्यों लेके आए, तो दो रानी है। बड़ा मुश्किल, शिवजी हर काल में भी शांतम, फिर शांत बैठे हैं। अच्छा सुने भाई, अगर आप बैठे हो एक छोटा कॉकरोच आ जाए, वांदो उंदर आ जाए, उमाबेन बैठेगी भागेगी? भागेगी ना, क्यों भाई क्या हो गया? और वो भगवान जिसको पूजा करती हो, शांताकारम भुजग शयनम, और भुजग शयनम सांप के ऊपर लेटे हुए भी शांताकारम है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शांताकारं भुजगशयनम। वो सांप के ऊपर सोते हुए भी शांत है, और ये गले में हाथ में पांव में नाक में और जटा में इतने नाग रख करके भी शांतम पद्मासनस्थम। तो ये लोग क्यों देवता क्यों लोग हैं? हम कॉकरोच से भागते हैं, चूहे से भागते हैं। तो हमको यहां क्या कहा है कि सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थान तो शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो, बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, एक कुश हो, उस पर मृगछाला हो, उस पर एक कोटन हो, नहीं है तो कंबल के ऊपर में एक सूती वस्त्र ट्वेल, इनका और कोई उपयोग नहीं करना। जहां भोजन करते हो वहां ध्यान मत करो, सोते हो वहां ध्यान मत करो, ध्यान का एक स्थान अलग रखो। फिर बाद में मन को एकाग्र करने के लिए ओमकार का अभ्यास करो, अपने गुरु हैं उनके मंत्र का स्मरण करो। जब भी बैठते हो हमेशा प्रार्थना करो, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में पहाड़ों में समुद्र में वन में जंगल में जन जन के जीवन में सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। हमेशा सबके शुभ की कामना करो, बाद में ध्यान करो। तो जो सबके सुख की कामना करते हो तो उनको ये कामना है, जैसे कि हा 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 ऐसा बोले तो पहाड़ से टकरा के जो आवाज वापस आती है, जैसे जगत के कल्याण की कामना करोगे तो जगत के कल्याण की तमाम वाइब्रेशन आपके कल्याण के लिए वापस आएंगे। किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा सोचने के वाइब्रेशन आपको वापस आएंगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे वो आपने एंड्रूज के कहानी तो सुने ही होंगे, सभी लोगों ने सुनी, किसने नहीं सुनी। एंड्रूज एक गुलाम था ग्रीक राजा का, भाग निकला,
बोले पकड़ो इसको, पीछे सिपाही लगे। किंतु ये गहर जंगल में चला गया। वह जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था, शेर के पांव में एक कांटा चुभ गया था, वो पक भी गया था। एंड्रूस ने सोचा मरना ही है तो मरे, कम से कम सेवा तो करे। तो उसने पांव उठा के मुंह में रखे, जोर से कांटा निकाल लिया, दबा करके सारा पीप निकाल लिया, कुछ वनस्पति ला करके पट्टी बांधी। रोज वो शेर को पट्टी बांधता रहा, कितने दिन तक, उसके सिर में भात घुमाता है, बदन में, दोनों दोस्त हो गए। शेर बहुत दिन का भूखा है किंतु इसको नहीं खाया ना। ऐसे करते वो जो जगह नहीं बदला तो वहां से पकड़ा गया। राजा ने कहा करो उसको कोठरी में बंद और एक किसी शेर को पकड़ के लाओ। इसी शेर को पकड़ के लाए, बोले शेर को भी 10 दिन भूखा रखो, फिर दोनों को एक बहुत बड़े पिंजड़े में रखो, सारी जनता को बुलाओ, लोग देखेंगे कि गुलाम भागेगा तो क्या होता है। अब उधर शेर भी लाए, गुलाम आए, दोनों एक दूसरे को देखकर पूंछ ला रहे, एक दूसरे को गले में चाट रहे, जैसे मां अपने बच्चे को चाटती है गाय बछड़े को, ऐसे शेर उसको चाट रहा है। लोग बाग बोले क्या हो गया, कैसे करके हो गया, विकृत से विकृत, भयानक से भयानक ऐसा शेर भी है, वो हमारा दोस्त बन सकता है। मन तो बन ही सकता है किंतु उसके लिए प्यार चाहिए। किसके लिए? अपने ध्यान के संबंध में प्यार चाहिए। तत्र एकाग्रम मन करता यथा चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त जो है, इंद्रियां हैं, उन तमाम को लगाना है कि ये समय पानीपुरी का नहीं है ना, ये समय सिनेमा का नहीं है, ये समय ध्यान का है। प्रतिदिन सतु नैरंतर्य, एक ही स्थान पर एवरी डे सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली रेगुलरली विदाउट फेल विथ इंटरेस्ट, जब आप ऐसे करेंगे, चौकड़ी मार के बैठेंगे और ओमकार करेंगे 5 मिनट 10 मिनट गुरु के मंत्र का जब करते रहेंगे, धीरे धीरे ओमकार बंद हो जाएगा, गुरु का मंत्र भी विलीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, केवल आपकी सांसें रह जाएंगी। सांस ही है, वो आती है जाती है, और सांस भी नहीं सुनेंगे, शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर से परे हो जाएंगे, केवल एक चेतना रह जाएगी, बाद में चेतना भी नहीं रह जाएगी, केवल एक प्राण रह जाएगा, एक आकाश रह जाएगा, एक ब्रह्म रह जाएगा। उसकी तो परीक्षा है, उसकी तो इच्छा है, उसकी तो कामना है। इन मंत्रों की पूर्णाहुति कल करेंगे। ओम शांति।